हैं या अभी तक तुम्हारे भैया नहीं आए, किसान भैया नहीं आए, चारों तरफ से इंदोले पड़ रहे हैं। मेरे पिताजी ने मुझे सुन रहे हमारे पिताजी ने भी हमारी पृथ्वी ले ली, मेरी भैया भी ले ली, किसान भैया भी नहीं आए और चारों तरफ मेरे इंदोले लग रहे हैं। शाम में छोटी छोटी बूंदियां भी पड़ रही, चारों ओर हरियाली छाई हुई है, एक तो भैया नहीं आया। ऐसे पत्ते में दो दिन बैठा रो रही थी, कितने में हम उसके दाम पे जाए। राधा जी रोने लगे, दोनों हमको एक प्रोटीन कर गए और भैया के चरण पकड़ करके हम रोने लगे। भैया भी रोने लग गए, अरे नहीं बन उनको हम लोग कैसे भूल सकते हैं, मैं काम में व्यस्त था इसलिए नहीं आया। अभी तुम्हारे लेने के लिए आए हैं, अभी तुम्हारे साथ ससुर से मिलते हैं और उनसे अनुमति लेकर के तुम्हें अभी बरसाने में ले चलेंगे। वहाँ पर चूल्हा पूरा तैयार है ऊपर में, यहाँ पर भी दानगढ़ है ऊपर में, मोर चोटी में चारों तरफ में झूले लग रहे हैं, मयूर चुप रहे हैं, कोयल भस रही है, चारों तरफ में हरियाली छाई हुई है। आज अभी मैं जा रहा हूँ, ये कह करके उन्होंने उनके सास से और ससुर से उन्होंने अनुमति मांगी और वादा किया कि मैं कल परसों में दे जाऊंगा। मैंने कहा कि एक महीने तक हम अपनी बहन को अपने यहाँ कुल मासिक तौर पर जो हमको रखना है प्रकार से वो करके दे गए और वहाँ पर जाकर के मैया रोने लगी, मैया से निपट गई। इसके बाद में जब शांत हुई तो रोड मिले ऊपर पहाड़ पर जहाँ की ब्रह्मगिरी पर्वत है उस पर लगे हुए हैं गिलास इत्यादि कर में कुछ अन्य प्रकार की स्थिति मिल जाए। सखियाँ बुला रही हैं श्याम को, कभी श्याम बुला रहे हैं सखियों को, कभी झूले एक तरफ से लगे हैं बैठे और कुछ जा रहे हैं। राधा जी ने कर तुम्हारे उनको पकड़ लिए, कभी आमने सामने बैठ सकते झूले झूल रहे हैं, कभी झूला इधर जाता है तो राधा जी ऊपर हो जाती हैं, कृष्ण नीचे हो जाते हैं, कभी इधर ऊपर में जाता है तो कभी राधा कृष्ण ही ऊपर हो जाते हैं, राधा जी नीचे हो जाते हैं। झूले लग रहे हैं और झूल रहे हैं और सखियाँ मल्लाराज बोलिए तो क्या बोलिए, बोलिए इसके बाद
बरसाना में जाकर
वहाँ पर इधर घर में दौड़ रहे हैं राजा जी के महल के पास में। जटले जी ने देखा ये सुबह कहाँ से आया, आखिर कुछ गड़बड़ है। मैंने सुबह को डाटा कि तू क्यों आया, हमारे घर के आमने सामने से क्यों आना काम कर रहा है, तुम यहाँ मत आओ। ये क्या कहूँ चाची, मेरा बछड़ा मैं खो गया था, बहुत परेशानी मैंने छोड़ा, वो बछड़ा नहीं मिला, इसीलिए मैं कुटने के लिए आया। तेरा बछड़ा क्या यहाँ आ गया, तो हो सकता है कि गुरु में बछड़ों में मिलकर के यहाँ आ गया हो, मैं जरा छोड़ना चाहता हूँ, तो जरा छोड़ ले, यहाँ पर तुम्हारा बछड़ा कहाँ से। तो वो ढूंढने के लिए चित्र में चला गया, गौशाला इत्यादि सब देखने लग गया, और इसी बीच में श्रीमती जी से मिल गया, मिल करके उसने राधा जी को कोई उपाय बतलाया। राधा जी उनके विरह में चल रहे थे, वो ठीक राधा जी जैसा देखने में था। राधा जी जैसे गोरी थी, उनकी बोली जैसी थी, उम्र जितनी थी, सब प्रकार से वो ऐसा ही था, बस कपड़े पहनने का केवल अंतर था। उन्होंने राधा जी का वेश अपना जैसा बना दिया, अपने राधा जी का वेश बना करके वहीं पर बैठ गए, राधा जी वो बन गए, और उन्होंने राधा जी को अपना कपड़ा, अपनी पगड़ी, अपनी लड़कियाँ और पहनने का जैसा होता है वैसा सब कुछ एकदम सुबल जैसा अब उनको बुला, और एक छोटा सा बछड़ा, नया छोटा सा बछड़ा उनकी गोदी में दी, जिसे कोई ना समझ सके ये महिला है, इसलिए इस चीज को ढकने के लिए, बस्तर को ढकने के लिए यहाँ पर बैठा दिया, बछड़े को लगा दिया, और आकर के सुबल के स्वर में राधा जी कहने लगी, सुबल बन करके, देख भैया मैं कह रहा था ना कि हमारा बछड़ा यहीं पर है, देखो हमारा बछड़ा मिल गया ना, मैं बछड़े को लेकर के अब मैं जा रहा हूँ, ये कह करके और उसको चकमा दे करके राधा जी निकलोगे। और वो कृष्ण गोचारण कर रहे थे गोवर्धन में, वहां पर लोग पहुंचे, कृष्ण ने उनको देखा, देखकर के सुबल राजा जी को नहीं लेकर के आया, मैं कैसे ले आता, मैं नहीं ला सका, क्यों नहीं ला सका, अरे वहां पर पारे पर पारे, चार पांच पारे पड़े हुए, वहां पर वो जटला इतनी बदमाश है, वो जाने नहीं देती, प्रवेश नहीं करने देती है, और आज तो भूमंडु भी राधा जी का पति भी लड़कियां लेकर के वहां पर खड़ा था, यदि कोई कृष्णा आए उनका सखा तो उसका टांग तोड़ देंगे, इसलिए मैं गया किंतु वहां से लौट करके आ गया, वो राधा जी से मेरी भेंट ही नहीं होने दी, बहुत मैंने चेष्टा की किंतु वो कृष्ण बड़े अफसोस करने लगे, तो जी अब सखा मैं क्या करूं, मैं उन्होंने कहा कि तो मैं क्या करूं, अब एकदम विरह में आतुर होकर के छटपट जब छट करने लगे, प्राण यहाँ तक आ गए, बछड़े को उन्होंने रख दिया है और रख करके अपनी पगड़ी हटा दी, और इतने में ललिता विशाखा इत्यादि जिनाएं कहाँ से जुट गई, और देखा जो सखियों का पूरा समाज और राधा जी सुबल के बीच में वहां पर खड़ी है, कृष्ण को बड़ा आनंद हुआ, फिर गले से दोनों मिलकर के वहीं पर झूला रचाया, और झूला रचाने के बाद में उसी बछड़े को लेकर के बछड़ा छोड़ दिया, और श्रीदाम जी हाँ फिर वो चले गए, और जाकर के किसी प्रकार से वो राधा जी सुबल बहुत चतुर वहां से किसी प्रकार से वो वहां से निकल करके चला आया, और दोनों को मिलते हुए देख करके बहुत ही आनंद हुआ, कृष्ण उसकी बार बार प्रशंसा सुबल की करने लगे। इस प्रकार से आज वृंदावन में ये लीला होती है, रास में भी ये लीलाएं होती हैं, विशेष करके राधा दामोदर में गोविंद जी ने आज राधा जी को सुबल सखा बनाकर उनके हाथ में बछड़ा दे देते हैं, और उनको इस प्रकार से दिखलाते हैं, सुबल को भी राधा जी बना करके आज सर्वत्र ये लीलाएं। अभी उनके मुख से एक सुंदर कीर्तन सुनेंगे, हमारे क्या नाम है, मन सुखा, हाँ जिनका मन सुख गया है, ऐसे ये मन सुखा जी हैं, मानो विपत्ति का पहाड़ गिर गया हो,
कीर्तनियों में एक बड़ा गुण होता है, कीर्तन जो कीर्तन सुंदर करने वाले बड़ा गुण, वो दूसरे के कीर्तन में नहीं बोले, मुख चुरा करके रखें और उनकी आशा रखें कि सभी हमारा फॉलो करें दूसरे, किंतु दूसरे के कीर्तन में वो नहीं बोलेंगे, ऐसा इनका स्वाभाविक गुण है। इनका कोई दोष मैं नहीं देखता, ये गायकों का ही ये दोष होता है। अभी सुनिए इनके एक कीर्तन सुनाइए। रोग लगे हुए समस्याएं एक पर एक, समुद्र में जैसे तरंगे आती हैं, एक गिरती है दूसरी आती है फिर दूसरी आती है फिर तीसरी आती है, ऐसा जगत में कोई नहीं है जो दुखी न हो। किसी को कम दुख है किसी को अधिक, किंतु दुखी सभी हैं। बुढ़ापा का दुख जरूर आएगा, लाख चेष्टा करो बुढ़ापा आएगी और जोर से तुम्हें भुगा लेगी और अंत में प्राण निकल जाएंगे और इसको जला दिया जाए, ये भी अनिवार्य है। इसलिए हमारे ऋषि मुनियों ने, कृष्ण ने स्वयं जगत का कल्याण कैसे हो, जगत को जीव कैसे सुखी हो, इसके लिए भगवान अवतरित होते हैं, अपने भक्तों को बीच बीच में अवतरित कराते हैं। इस जगत से पार करने के लिए, दुखों को पार करके सुख और शांति से रहने के लिए बस एक ही उपाय है, वो क्या, भगवान का गुणगान करें, भगवान की लीलाओं का कीर्तन करें, इन पदों का गायन करके अपने मन को उसमें रमाए, तब तो आदमी सुखी हो सकता है। यदि कोई कहे कि खाना पीना कैसे चलेगा यदि इसी में रमाए, कैसे लगेगा, मीराबाई का गुजारा नहीं हुआ, हम लोग दिन रात इसी में लगे रहते हैं, हमारा गुजारा नहीं होता। जिसको प्रभु ने पेट और मुख दिया है उसका सबका गुजारा वो प्रभु करते हैं, दाता राम है, सबके दाता राम, सबके दाता राम, पशु पक्षी की पतंग ऐसा कोई नहीं है जिसके दाता राम नहीं है, कृष्ण नहीं है। इस पर विश्वास कर करके भगवान का हरिनाम करो तो देखो तो संसार की परिस्थिति बदल जाएगी, सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। तब कथामृतम सप्त जीवनम कब्जीर्णितम कल्मषाः, भगवान की कथाएं ऐसी हैं उनमें कितनी शक्ति है, वो जसमनी शक्ति है जिसकी हम कल्पना नहीं कर सकते। पंगु को पहाड़ लगाना देता है ये कथाएं, पंगु भी बड़े बड़े गिरिराजों को लांग जाता है, मुख को बाचाल बना देता है, सारे दुखों का अंत कर देता है। भगवान का एक नाम यदि कोई करे और निरंतर यदि नाम करे तो उसका पाप ही क्या है, न हो तो परीक्षा करके देखो ये दुख का है। इसीलिए हमारे ऋषियों ने, महर्षियों ने, रसिकों ने, भावुकों ने कृष्ण लीला का विविध प्रकार से गान किया है। हम लोगों को संगीत अच्छी लगती है, सठी काम संगीत में ही कृष्ण लीला का ऐसा सुंदर वर्णन किया, जो सावन आया कुहार पर पड़ रही है, मयूर कूक रहे हैं, कोयल गुहक रही है, हिंडोले लगे हुए हैं, कदम्ब के फूल खिले हुए हैं, सुंदर सुंदर सुगंधा आ रही है और उसमें कृष्ण को झुला रहे हैं, मल्लाग राग से गान करते करते उसमें तक देखेंगे दूध कहाँ चला जाएगा। इसलिए कृष्ण मंत्र में, कृष्ण नाम में, कृष्ण संगीत में, कृष्ण की लीला कथाओं के चिंतन में और स्मरण में इतनी शक्ति है कि सारे दुख भाग सकते हैं, एक ही जन्म में भव सागर को जथा शीघ्र पार करके भगवान के लोक में भगवान की सेवा में निमग्न हो सकता है। हम सभी भगवान के दास दासी हैं। अभी संसार में भगवान को भूल करके हम लोग इस जगत में आए हैं और माया घानी में हमें पीस रही है, उसमें कोई भेदभाव माया में नहीं है, वो किसी को नहीं छोड़ती। जो कृष्ण को भूल रहे हैं, माया लिप्त हो रहे हैं, उन सबको वो अच्छी तरह से सत्व की भांति में पीस देगी। उसमें गरीब अमीर, धनी गरीब, रईस जमींदार, किसी का भेद नहीं है, भाव नहीं है। डॉक्टर इंजीनियर वकील बैरिस्टर राष्ट्रपति प्रधानमंत्री किसी को नहीं छोड़ेगी, सबको सत्तु की तरह में पीस देगी यदि भगवान का भजन नहीं किया। केवल ये संगीत कीर्तन मनोरंजन के लिए ही नहीं है। जब तक हम सुनते हैं देखो तो कैसा इसके प्रभाव ये संसार को हम भूल जाते हैं, दुख को भूल जाते हैं और इसमें तन्मय हो जाते हैं। इसलिए साधु संत लोग या तो संसार में रहते ही अथवा उसको त्याग करके भगवान का नित्य निरंतर गुणगान करते हैं, नाम करते हैं। उल्टा नाम जप कर वाल्मीकि भाई ब्रह्म के समान बन गए वाल्मीकि जी। अरे मीरा को देखो कितने उसको कष्ट, कितने कष्ट दिए उसको, सांप से कटवाने की चेष्टा की, उसे बीच जलवाया, उसे जलाने की चेष्टा की, नहीं जला। प्रहलाद महाराज जी को भी देखो, प्रहलाद महाराज के ऊपर में कितनी समस्या, एक हिरण कहीं जंगल में चल रही थी, भोली भाली बड़ी सुंदर, वो जंगल में चलते चलते एक ऐसे स्थल में जा पहुंची जहां पर बड़ी सुंदर सुंदर घासें बनी थी,
एक तरफ में नदी
और दूसरे तरफ में चार पांच बड़े 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 कुत्ते शिकार, और एक तरफ में कुत्ते के ठीक विपरीत तरफ में एक बड़ा भारी मोटा शिकारी धनुष और बाण लिए हुए तैयार है, और एक तरफ में आगे ले लेंगे तड़प भोजन
से जाल लगा हुआ विराट, इसे देखकर के हिरण घबरा गई, मरने वाली ही है, चारों तरफ से विपत्तियां हैं, किधर जाए, जिधर में जाल था उसके पीछे में आग जल रही थी, इसलिए किसी तरह भी उसका बचने की कोई आशा नहीं रह गई। देखा जब तो मर रही है, मैं क्या करूं, उसने आंख बंद कर दिए और बोली हे गोविंद रास शरण अब तो जीवन हर, हे गोविंद मैंने आपके चरणों में अपने को मैंने समर्पण कर दिया, अभी इस विपत्ति में आप ही हमारे रखवाले हैं। उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम चारों तरफ में विपत्तियां, एक तरफ में आग जल रही, एक तरफ में वो जाल, एक तरफ में कुत्ते, एक तरफ में शिकारी, कैसे मैं बचूं। बस उसने आंख बंद करके त्राही त्राही करके भगवान को पुकारने लगे। इतने में देखा बड़ी जोरों से आंधी आई, इतनी जोरों से पत्थर कंकड़ भी उड़ने लगे और शिकारी के आंखों में वो कंकड़ पत्थर और धूल भर गई, और जेहूं उसने हाथ उठाया अपने को ये बचा इसके आंख को ठीक करने के लिए, इतने में बाण उछला और कुत्तों को लगा, कुत्ते तो दो एक मरे और दूसरे की हाथ भागे, और इतने में जो बरसी वर्षा होने लगी, आग बुझ गई और जाल कहां उड़ करके चला गया, और उधर शिकारी भी बैठ करके दोनों आंखों को ऐसे करना। इतने में हिरण ने देखा कि चारों तरफ में रास्ता साफ, बस जिधर से इच्छा आई उधर से दौड़ती हुई जंप करती हुई और निकल करके चली गई। बहुत ऐसे ही हम संसार में बहुत से दुखों से घिरे हुए हैं, पल पल में दुख आते हैं, पल पल में हमें कठिनाई आती हैं, और ऐसा थे अब कैसे बचें, मान ये पागल हो जाएंगे या मर जाएंगे। उसी समय यदि कोई सब कुछ छोड़ करके सहारा हाथ उठा दे द्रौपदी की भांति, हे प्रभु राख शरण अब तो जीवन है, बस सारी समस्याएं मिट जाएंगी, एक मिनट चुटकी बजाते ही देखेंगे चारों तरफ में रास्ता साफ हो गया, और जम को और मृत्यु के भी सिर पर पैर रखते हुए एकदम वैकुंठ बोलोक में वो चला गया। ये गुरु होने की है, इसलिए भगवान का स्मरण करो, कीर्तन करो और पूर्ण में विश्वास करो, भगवान के भजन के बिना कहीं भी सुख और शांति नहीं। बारी मथे बरु हो यिकताते बरु दे बिनु हरि भजन न भव तरिय यह सिद्धांत सयपे। बार मथे बंधी पानी के मथने से भले ही पिलोने से घी निकल आए, नहीं निकलेगा लास्ट जन्म में भी, तो भी ये मान लेते हैं यहाँ निकल सकता है। और बार मथे बरु हो सिकताते बरु से, और जमुना की रेती उठा लाओ और घानी में दे दो और उसको पीसते रहो लास्ट जन्म तक, तो अभी तेल नहीं निकलेगा, किंतु मान लिया कि हाँ इसमें से भी तेल निकल सकता है, ये असंभव भी संभव हो सकता है, किंतु भाई एक चीज नहीं होगा, बिनु हरि भजन न भव तरिय, बिना भगवान के भजन के इस संसार को, इस संसार के कष्टों को आप जन्म जन्मांतर तक भोगते रहेंगे किंतु पार नहीं हो सकते हैं। इसलिए दुखों को पार करना चाहते हैं और नित्य आनंद और सुखी होना चाहते हैं तो भगवान का भजन कीजिए, भक्ति कीजिए। बहुत सरल, चलते फिरते उठते बैठते नाम का स्मरण करो, चलते फिरते कीर्तन कर, राधा रमन हरि गोविंद जय गोविंद जय जय बनाओ, घर के सब काम करो, बच्चों को पालो पोसो, इसमें क्या लगता है? चलते फिरते कहने में पैसा नहीं लगता, पवित्र स्नान करने की भी कोई जरूरत नहीं है, कोई भी समस्या नहीं है, उसमें कोई खर्च नहीं है, फिर क्यों तो क्यों नहीं कर सकते हैं? गोविंद दामो गोविंद दामो सकते, पैसा लगता है? अरे जैसा स्वर नहीं है, राग नहीं है, हारमोनियम ताबला इस्तराज नहीं, कोई बात नहीं, मोटी आवाज में भी तुम लोग कर सकते हो, इसमें क्या लगता है? सारी समस्याएं सुलझ जाएंगी इसी से और जीवन में सुखी और शांति हो सकते हैं। इसीलिए झूलन का त्योहार हमारे श्री शिव महर्षियों ने बनाया है। कृष्ण इस झूले में कितना आनंदित रूप में झूलते हैं, करोड़ों गोपियों को झूलाते हैं, अपने झूलते हैं, करोड़ों करोड़ों गोपियों को झूलाते हैं, उसमें प्रेम नित्य करता है, दूसरों समय नित्य कराता है, राधा कृष्ण को भी नित्य कराता है, सारा ब्रज नाचता है, भक्त लोग नाचते हैं, कोयल नाचती है, मयूर कूदते हैं, नाचते हैं, सभी लोग इसमें तन्मय हो जाते हैं। इसे बढ़कर के कोई सरल सहज तरीका नहीं है विश्व से उद्धार होने का। इसलिए आप लोग हरि नाम कीजिए, कृष्ण की लीला कथाओं का श्रवण कीजिए, इनके मधुर मधुर पदों का गायन कीजिए, देखे जिस संसार कहाँ दूर हो जाएगा, अपने आप। अभी आप कीर्तन कीजिए महामंत्र का करो।
दिनों में स्नान करने से कहीं थोड़ी सी निर्मलता आती है और वैष्णव का चरण धारण करता है, साथ ही साथ में कृष्ण के चरणों में प्रेम उत्पन्न होता है। वैष्णव का अधरामृत, अधरामृत मैंने क्या, शिष्ट भोजन और अधरामृत मैंने उनकी हरि कथा यदि कोई धारण करता है, साथ ही साथ में उनका हृदय बन जाता है और कृष्ण के चरणों में प्रेम करता है और उनका चरणामृत पान करने से तीन ये महाबले भजन के लिए। किंतु वैष्णव होना चाहिए वैष्णव, वैष्णव ठगबाजी करने वाले वैष्णव नहीं, यथार्थ में समस्त वैष्णव गुणों से अलंकृत होने पर ऐसे वैष्णवों का आदर करें, उनका सम्मान करें, उनके अनुगत्य में रहकर के भजन करें, इससे बढ़कर के होते बिना वैष्णव संघ के आज तक कोई भी साधु नहीं हुआ, बिना वैष्णव संघ के चित्त निर्मल नहीं होगा, भक्ति भी नहीं आएगी। अपने प्रयास से लाभ करो वो सब करना, इस चीज को समझो, मन के द्वारा भगवान नहीं, लाभ तुम करो अपने मन से, अपने मन से तुम हरिनाम करो वो भी करना है।
मन से शास्त्र विधियों का उल्लंघन करते हुए तुम भजन करो, एकांतिक हरि भजन भी तो क्या है, उत्पाद है वो, केवल उत्पाद है। आज हम देखते हैं हमारे गुरु जी का देखते
जो नित्य भजन करते हैं, वृंदावन में जा करते
माधुरी करते हैं, गोवर्धन की परिक्रमा करते हैं, वैष्णव का संग नहीं करते, हरि नहीं कथा करते, दो दिन के बाद में जरूर उनका पतन हो जाता है, गिर जाते हैं। हमारी भी अजमाई की जम देखते हैं गुरु वैष्णव का आदेश न लेकर के उनका अंग भजन नहीं करते, दो दिन तक खूब परिक्रमा करेंगे, निर्जला उपवास करते हैं, रात भर जागरण करते हैं, और तीसरे दिन कहते हैं प्यारे ये क्या किया, तो कुछ हुआ नहीं, अपने पैरों पर बल पर खड़े होकर के माधुकरण करने जाएंगे, हम तो अपना रिक्शा चलाएंगे और भजन करेंगे। दो दिन के बाद में रिक्शा खींचने लगे, तीसरे दिन के बाद में परिणाम करना तो गया झोली में, और वैष्णव के प्रति आदर से उठा हो गया, मैं गोवर्धन की परिक्रमा करता हूँ, उपवास करता हूँ, आया बिना ले गया इस जहन्नम में, किसी स्त्री को भगा करके लेकर के चले गए, ये उनका भजन हो गया खत्म। गुरु वैष्णव के अनुगत में हो निर्जय में भजन करने की चेष्टा मत करो, ये हमने प्रभुपाद जी के मुख से, गुरु वैष्णव के मुख से, भक्तिनो ठाकुर जी के और महाप्र